हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 2। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण एवं श्रवण करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदानहयं दराति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथ पीतं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांता सुराधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारुण बिंबफलाधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं ಶಿವಾಸದಿ ಗೌರಭಾಸ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೀ ಜಯ ಹೋ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ದೋ. कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. सूत बता रहे हैं, सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषियों को भगवान की महानता के विषय में बता रहे हैं. कहते हैं यस्यां भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वत नाभिरिदं भुजादासि ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां पितन्वत नाभिरिदं भुजादासि ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वत नाभिरिदां भुजादासि ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां ತಂವಿತನ್ವತಃ ನಾಭಿರಿದಂ ಭುಜಾದಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂಪತಿ ಯಸ್ಯಂಬಸಿ ಶಯಾನಸ್ಯ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ವಿತನ್ವತಃ ನಾಭಿರಿದಂ ಭುಜಾದಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂಪತಿ ಯಸ್ಯಂಬಸಿ ಶಯಾನಸ್ಯ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ವಿತನ್ವತಃ ನಾಭಿರಿದಂ ಭುಜಾದಾಸೀತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂಪತಿ ಯಸ್ಯಂಬಸಿ ಶಯಾನಸ್ಯ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ವಿತನ್ವತಃ ನಾಭಿರಿದಂ ಭುಜಾದಾಸೀತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂಪತಿ ಯಸ್ಯಂಭಸಿ ಶಯಾನಸ್ಯ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ವಿತನ್ವತಃ ನಾಭಿರಿದಂ ಭುಜಾದಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂಪತಿ ಯಸ್ಯಂಭಸಿ ಶಯಾನಸ್ಯ ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ವಿತನ್ವತಃ ನಾಭಿರಿದಂ ಭುಜಾದಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂಪತಿ. ಶಬ್ದೋ ಕಾ ಅರ್ಥ ದೇಖಿಯೇ. ಯಸ್ಯ ಅಂಬಸಿ ಶಯಾನಸ್ಯ. ಯಸ್ಯ ಮತಲಬ್ ಜಿನ್ಕೆ, ಜಿನ್ಕೆ ಮತಲಬ್ ಕಿನ್ಕೆ. अब वो जो कारण दक्षिणा विष्णु लेते हुए थे ना कारण सवन मंत्र में, वो जब श्वास ले रहे थे तो उनके रोम कुंपों से अनेकानेक ब्रह्मांड निकल रहे थे. ठीक है, फिर अब वो ब्रह्मांड निकले हैं तो ब्रह्मांड को चलाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए भी कार्य कोई चाहिए होता ना, तो फिर उसी में से उनका ही एक अंश यानी कारण दक्षिण विष्णु पुरुष का एक अंश निकलकर गर्भो दक्षिण के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है. इसलिए यहाँ पर लिखा यस्य यानी उन्हीं के आगे अम्बसी. अम्बसी कहते हैं जल में. अब ब्रह्मांड के अंदर पूरा जल है और जल के अंदर क्या करते हैं वो शयनस्य लेते हुए हैं. अब वो जो दूसरे रूप जो उनके निकले हैं उनका नाम है गर्भो दक्षिणा विष्णु और वो उस ब्रह्मांड के अंदर जल में लेते हुए कार्य क्या रहे हैं? योग निद्रा ध्यान में सोए हुए हैं और वितन्वतः अर्थात विस्तार करते हैं। वास्तव में जब हम जीव कोई काम करते हैं तो उसके लिए जब ही सोए होंगे ना तो हमारे हमें आके उठाएंगे कि भाई उठो, आपको काम हमने करना है, सोए हुए हो। हमें कार्य करने के लिए उठना पड़ता है, परंतु ये भगवान की महानता है कि वो क्या कर रहे हैं, योग निद्रा लेटे हुए हैं और विस्तार कर रहे हैं। क्या विस्तार कर रहे हैं? नाभि, यानी जो उनका नाभि कमल है, वहां से वृद्ध यानी सरोवर के नाभि से क्या होता है, अम्बुजात कमल से आसीत। अब नाभि में से एक नाल निकलती है और वहां पर जो उसके ऊपर कमल की नाल के ऊपर जो ब्रह्मा जी आसीत होते हैं, यहाँ पर पता कमल से आसीत यानी प्रकट होते हैं ब्रह्मा, जीवों के पितामह। ये भगवान की असीम, ये वैभव है भगवान का, ये भगवान की असीम शक्ति है कि जीवों, या आज भगवान ने क्रिएशन का पहला पुरुष यानी पहला जीव उत्पन्न किया। अब तक तो विष्णु तत्व ही थे, क्योंकि भगवान में से कौन आए थे, कारण दक्षाएं विष्णु का स्वरूप निकला था, और उसके बाद उनमें से गर्भो दक्षाएं विष्णु, और आज भगवान ने प्रथम जीव को उत्पन्न किया है जिनका नाम है ब्रह्मा जी। और वो किधर से आए हैं, भगवान की नाभिक नाभ कमल जो है, भगवान के नाभि रूप में एक नाल जिस पर कमल है और कमल के ऊपर क्या है, आसीत प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी यानी जीवों के पितामह। विश्व सृजन पति, और ब्रह्मा जी का क्या काम है, विश्व यानी ब्रह्मांड। बहुत सारे ब्रह्मांड तो उत्पन्न कर दिए कारण दक्षाय विष्णु में, तो फिर हर एक जितने भी ब्रह्मांड है उनमें से हर एक के अंदर गर्भो दक्षाय विष्णु स्थापित हो जाते हैं और उनकी नाल से, उनकी जो नाभि है उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, विश्व यानी ब्रह्मांड का सृजन यानी शिल्पी, पति यानी स्वामी। अब विश्व को चलाने के लिए बहुत सारे शिल्पी चाहिए होते, शिल्पी मतलब वर्कर्स जितने भी होंगे उनके पति अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। अनुवाद देखिए, पुरुष का एक भाग ब्रह्मांड के जल के भीतर लेता है, इसके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल फूटता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब आज क्या हुआ है, कल है ना, कारण दक्षाय विष्णु के रोम कुपों से बहुत असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे थे और आज उसके बाद की क्रिया के विषय में बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत सारे कारीगर चाहिए होंगे, तो उनके कारीगरों के शिल्पियों के स्वामी अब आज ब्रह्मा जी, क्योंकि सारे ब्रह्मांडों के अंदर गर्भो दक्षाई के रूप में भगवान का एक अंश आ गया और उनकी नाभि कमल से एक कमल की नाल उत्पन्न हुई और उसके ऊपर कमल है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, वो अब सृजन करेंगे ना, सृजामपति यानी जितने अभी सृजन करेंगे, सृष्टि को उत्पन्न करेंगे, लेकिन आज तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तो उनके विषय में कुछ बात करते हैं कि वो अब पहले जीव हैं, तो उन वो कितना जिएंगे, कब तक उनकी आयु होगी, क्या करेंगे। सबसे प्रथम बात जो जानने की है वो ये है कि ये आज ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए हैं उनकी आयु कितनी बड़ी है, तो वो जानने के लिए पता चलता है हम अपने सेकंड से देखते हैं, क्योंकि हमारा काल जो है, हमारा समय जो है वो सेकंड से स्टार्ट होता है। जब 60 सेकंड होते हैं तो एक मिनट बनता है, जब 60 मिनट मिलते हैं तो एक घंटा होता है, जब 12 घंटे मिलते हैं तो एक दिन, 12 घंटे की एक दिन और 12 घंटे का एक रात यानी 24 घंटे का संपूर्ण दिन बनता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो एक महीना, और ऐसे 12 महीने बीतते हैं तो एक साल होता है, इतना तो हम सबको आता है। अब इसके बाद हम चतुर्युग के विषय में बात करेंगे कि ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक कलयुग होता है और इसका डबल यानी 8,64,000 युग जब बीतते हैं तो एक द्वापर युग होता है और इसका तिगुना यानी 4,32,000 का तिगुना 12,96,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक त्रेता युग होता है और उसके बाद 17,28,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक सतयुग होता है। और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की अवधि को जब मिलाया जाता है तो 43,20,000 वर्ष बीतते हैं। ऐसे 43,20,000 वर्ष यानी 43,20,000 ईयर्स जब 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन के 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे यानी 43,20,000 इंटू 1,000 ब्रह्मा जी के 12 घंटे और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात है। तो जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है? 8,64,00,000,000 वर्ष। यानी हमारे संसार में जब 8,64,00,000,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन गुजरता है और ब्रह्मा जी की का जो है ना ऐसे एक दिन कितना हुआ 8,64,00,000,000 और ऐसे 30 दिन का एक महीना होता है ब्रह्मा जी का और ऐसे ही 12 महीने का एक साल होता है। और वो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है जानते हैं? 100 साल, है ना। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कल्पना करें, इतनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी के तो एक दिन में हम जैसे करोड़ों कीड़े मकोड़े आते होंगे, करोड़ों बार जन्म लेंगे, क्योंकि एक दिन कितना है? 8,64,00,000,000 वर्ष जब इधर संसार में होते हैं तो एक दिन है, तो हमारे जैसे कितने कीड़े मकोड़े पैदा होते होंगे और मरते होंगे, वापस पैदा होते होंगे, मरते होंगे, वापस पैदा होते होंगे, मरते होंगे। तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते होंगे कि अभी तो पैदा हुआ है, अभी मेरा एक दिन खत्म नहीं होगा, मेरे 12 घंटे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि 12 घंटे कितने होते हैं? 4,32,00,000 ना वर्ष के 12 घंटे होते हैं उनके। तो उनके इतने सारे वर्षों तक तो पता नहीं कितने आते होंगे जाते होंगे, कितनी भार होता होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी सोचते होंगे कि मनुष्य लोग हैं, इतना छोटा सा इनको जीवन मिला है, क्यों नहीं भगवान की भक्ति करते, इतने सारे महत्वपूर्ण जो सारे कार्य बिल्कुल फिजूल है उनको महत्वपूर्ण बता रहे, क्योंकि अभी चुटकी में तो उनका जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन भक्तों, आप जानते हो ये ब्रह्मा जी कि जब 100 साल पूरे होते हैं, जब उनकी आयु पूरी होती है ना, तब कारण दक्षाय विष्णु एक बार सांस लेते हैं, बस एक बार उनकी सांस अंदर जाती है, सिर्फ वन साइड, तो क्या होता है ब्रह्मांड पूरा उनके अंदर चला जाता है वापस से। अंदर जब सांस लेने के टाइम पर अंदर जाते हैं तो ब्रह्मांड अंदर जाते हैं, और जब सांस लेने के टाइम पर बाहर निकलता है तो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। तो कल्पना करो भक्तों, ये भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे, कितने विशाल होंगे कि ब्रह्मा जी का पूरा इतना बड़ा जीवन भगवान की एक सांस की अवधि है। इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में करते हैं और कहते हैं, यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलज जगदण्ड नन्दनाथा विष्णु महंस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमः भजामि कि यस्य निश्वसित कालम अथावलंब्य यानी उनका एक सांस लेने का जो काल है एक सांस लेने की जो अवधि है जीवन तिलोम विलचा जगदंडनाथा तो जो जगन जग के जितने भी नाथ है यानी ब्रह्मागण है उनकी आयु केवल इतनी है जितना वो एक सांस लेते हैं। परंतु ब्रह्मा जी ने इसके बाद भी एक बहुत ही सुंदर वास्तविकता लिखी है कि वो महान विष्णु जो है उनकी एक सांस के जितना तो मेरा जीवन है। लेकिन आगे लिखा विष्णु महंस इह यस्य कला विशेषो कि वो जो महान महान विष्णु है जो एक सांस में सारे ब्रह्मांडों को अंदर ले लेते हैं ऐसे विष्णु महंस इह यस्य यस्य मतलब उनकी कला विशेषो। कला विशेषो मतलब विशेष कला है एक छोटी सी कला है एक कारीगरी है छोटी सी एक छोटा सा चमत्कार एक छोटा सा सफुलिंग है किनका गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि कि वो जो भगवान श्री कृष्ण है वो बहुत सारी कारीगरी करते हैं और बहुत सारे कार्य हैं उनके और ये जो विष्णु है वो तो उनका छोटा सा एक खेल है एक छोटे से खेल के बराबर उनका जीवन है और वो करते हैं अवधि पूरी होती है तो ये सब भी भगवान ये पूरा प्रलय हो जाता है महाप्रलय हो जाता है सब कुछ भगवान के अंदर चला जाता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे ब्रह्मा जी आज प्रकट हुए हैं उनके विषय में हमने पढ़ा। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य बताएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रथम पुरुष कारणों दक्षाय विष्णु है उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाता है। यानी पहले कारण दक्षाय विष्णु था फिर उनमें से ब्रह्मांड निकले फिर जो दूसरा अभी गर्भो दक्षाय विष्णु है वो उन सब ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गया। वह आधे ब्रह्मांड में लेटा हुआ है जो उसके शरीर के जल से भरा है। अब यानी आधा ब्रह्मांड पूरा भगवान क्षीरोदशाय विष्णु है ना सॉरी क्षीरोदशाय नहीं है ना अभी तक नहीं आया गर्भोदशाय विष्णु से पूरा पूरा फुल है यानी जितना भी ब्रह्मांड है उसका आधा पूरा पूरा गर्भोदशाय विष्णु का शरीर है। ठीक है शरीर के जल से भरा हुआ है और इन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल नाल निकला है जो ब्रह्मांड का सॉरी ब्रह्मा का जन्म स्थल है। अब ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनकी नाभि से कमल नाल निकली है और वो जो कमल है वो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। जैसे हमारा जन्म स्थल क्या पाकिस्तान होता है किसी का इंडिया होता है किसी का क्या होता है तो ब्रह्मा जी का जन्म स्थल क्या है जन्मभूमि है वो कमल। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगर डिजाइन तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है। यहाँ पर बताया ना कि सृजनपति यानी जितने भी देवता अभी और उत्पन्न होंगे उनके पति उनके स्वामी कौन है ब्रह्मा जी है। इस कमल नाल के भीतर भूमंडल के 14 लोक आते हैं जिनमें पृथ्वी मध्य में स्थित है। अभी जो कमल नाल है इसी के अंदर भूमंडल के 14 लोक हैं। अब पृथ्वी मध्य में अब 14 में मध्य कैसे हो सकता है क्योंकि अब ऊपर नीचे कैसे होगा मध्य मतलब पहले नंबर पर अगर यहाँ से काउंट करेंगे मतलब वन नंबर पे पृथ्वी है। ठीक है वन के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी ऊपर से होंगे। अब ये वन नंबर पे पृथ्वी है तो नीचे से वापस वन स्टार्ट होगा यानी नीचे 7 होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे 7 है ऊपर 6 लोग हैं। तो पृथ्वी इसको भूलोक कहते हैं और इसको इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। इसके ऊपर कौन से होते हैं कौन रहते हैं ह्यूमंस बींग, यानी हम लोग मनुष्य लोग रहते हैं और जितने भी दूसरे प्राणी हैं, यानी कि जितने दूसरे प्राणी कौन है, जानवर हैं इत्यादि, वो सब यहाँ पर रहते हैं। उसके ऊपर भूलोक, स्काई, आसमान या आकाश है, उसके उसमें क्या रहते हैं, मतलब भूलोक में क्या रहता है, भूत, प्रेत, पिशाच, ठीक है। उसके बाद स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में डेमी गॉड्स जो हैं, देवता लोक हैं, वो रहते हैं। उसके बाद महर लोक है, और वहां पर महर्षि वगैरह रहते हैं। उसके बाद जनलोक है, जनलोक में नव योगेंद्र रहते हैं। उसके बाद तपलोक है, और तपलोक में सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार रहते हैं। उसके बाद ब्रह्मलोक है, वो जो कमल का जो टॉप है ना, उसके बाद सत्यलोक है, उसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। ऊपर वाले सारे समझ में आ गए, पृथ्वी यानी भूलोक, उस भूलोक, उसके बाद भूलोक, उसके बाद स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ठीक है। अब पृथ्वी के नीचे जाएंगे, नीचे क्या है, अतल, वितल, उसके बाद सुतल। सुतल लोक जहाँ पर महाराजा बलि रहते हैं, और वामन भगवान जहाँ पर उनके ना पार्षद बनकर रहते हैं, वहां पर पहले अतल है, फिर वितल है, फिर सुतल है, फिर तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल है। ये सात नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सात लोग कहाँ पर हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से नाल निकली है ना, उसके नाल की जो डंडी है ना, उस पर ये सारे लोक टिके हुए हैं। ये सारे लोक हैं, 14 लोक हैं, ठीक है। तो उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कमल नाल के भीतर भूमंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी मध्य में है। इसके ऊपर अन्य 6 लोक हैं, और सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक या सत्य लोक कहलाता है। पृथ्वी के नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है। अब शीला प्रभुपाद जी आगे की क्रिया बता रहे हैं कि अब गर्भोदक्षाय विष्णु ने क्या कर दिया, ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया और सारे लोक उत्पन्न कर दिए, और सारे लोक के अंदर जो प्राणी है उनको क्रिया करने के लिए कोई पावर चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं ना, तो उनको पावर देने के लिए क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है, जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं ना, उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। अत्यंत सुंदर है ये क्षीरोदक्षाय विष्णु। इसे ढक कहते हैं समुद्र को, शाय मतलब शयन करना, वो क्या करते हैं, वो भी शयन करते हैं। कार्य करने वाले, मतलब उनको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं। भगवान के जो विष्णु तत्व हैं, उनको काम करने के लिए, जैसे हमारे, हम क्या करते हैं, भोजा उठाते हैं, कार्य करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, वो तो आराम करते हैं, रिलैक्स लेते हैं। दक्षाई पहले कारण दक्षाई, वो रोम को जो कुपो से ब्रह्मांड बना रहे थे। हम यदि एक घर बनाने के लिए बैठते हैं अपना, तो बोलते भाई अभी हमारे घर में काम हो रहा है, हमारे घर में काम हो रहा है, हमारे घर में काम हो रहा है, दिमाग चट, धन चट, हर चीज चट, सारा सत्यानाश हो जाता है जब घर का घर बन रहा होता है। लेकिन वो ब्रह्मांड बना रहे हैं और रिलैक्स होके सोए हुए। उसके बाद अगर एक बच्चा किसी को उत्पन्न होता है, जैसे कोई संतान पैदा होती है, तो क्या होता है, जो माता पिता है, माता बिचारी जो पैदा करते हैं, वो उसको ऐसा लगता है जिंदगी सीमित हो गई, अब बच्चा पैदा हो गया, सुबह से लेकर रात तक उसी के लिए जी रहा होता है बंदा। ऐसा लगता है कि बस अब इसके अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता, बच्चा है, रो रहा है, कैसे कर सकता। लेकिन उन्होंने उनके कारण दक्षाय विष्णु से, जो गर्भोदक्षाय विष्णु, उन्होंने क्या क्या उत्पन्न किया, सारे लोक उत्पन्न किए, ब्रह्मा जी उत्पन्न किया, लेकिन रिलैक्स होके सोए हुए हैं। और अब यह क्षीरोदक्षाय, ये क्षीर कहते हैं दूध को, जैसे हमने कभी देखी नहीं है ना इस तरह, क्योंकि यहाँ हमारे संसार में केवल खारे पानी का समुद्र ही देखते हैं हम लोग, तो हमें ऐसा लगता है कि खारे वही समुद्र होता है, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक लोक में अलग अलग समुद्र होते हैं। दूध का समुद्र होता है,
और ऐसा बताया अभी हम पढ़ेंगे भागवतम में, मैंगो के जूस का समुद्र होता है, गन्ने के रस का समुद्र होता है और तेल का समुद्र होता है, बहुत सारे समुद्र होते हैं। तो जो क्षीरोदक्षाएं विष्णु है वो दूध के समुद्र में लेटते हैं और वो क्या करते हैं, समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा, जितने भी जीव हैं उनके हृदय के अंदर परमात्मा रूप में स्थित हो जाते हैं। इसके विषय में हमने पढ़ा ना 13 चैप्टर में कि वो क्या करते हैं, 13.23 में हमने पढ़ा था, उपदेष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमा मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान ने बताया था अर्जुन को कि इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता रहता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के स्वरूप में विद्यमान है और जो परमात्मेति चाप्युक्त परमात्मा कहलाता है, हृदय के अंदर बैठा होता है और आपके कार्यों का साक्षी होता है और आपको विषय भोग करने की अनुमति देता है क्योंकि जीव की इच्छा है। उसके विषय में हमने पढ़ा। आगे यहाँ पर श्री गोपाल जी बता रहे हैं कि वे हरि कहलाते हैं। हरि इतना सुंदर भगवान का नाम यहाँ श्री गोपाल जी ने लिखा है, दिल करता है उनके विषय में कुछ बोला जाए। वास्तव में हरि शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेकों अर्थ, दो ही मुख्यतम। हरि शब्द के अनेकों अर्थ हैं, उसमें से दो बहुत बहुत मुख्य हैं। सर्व अमंगल हरे, कि आपकी जितने भी अमंगल हैं उनको हर लेता है और प्रेम दिए, यानी कि हृदय तो आपका ले लेगा, अमंगल भी ले लेगा, आपका हृदय भी ले लेगा, लेकिन आपको उसकी बदली में प्रेम दे देगा। वास्तव में हरि का मतलब होता है चोर। संस्कृत में हरि चोर को कहते हैं, हरि का मतलब होता है चुरा लेना। और हमारे कृष्ण तो सबसे बड़े चोर हैं, है ना, क्या क्या चुराते हैं बताते हैं। शास्त्र कहता है ब्रजी प्रसिद्धम नवनीत चोरम, वो ब्रज में प्रसिद्ध नवनीत चोर है। नवनीत कहते हैं माखन को, तो वो माखन चोरी करते हैं। और श्री गोपिका नाम विपुल कीत चोरम, वो क्या चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र चोरी करते हैं। और आगे खाली वस्त्र ही चोरी नहीं करते, वो तो हृदय निकाल के चोरी कर देते हैं जीव का। किसका हृदय चोरी किया जानते हो, श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, श्रीमती राधा जी का हृदय तक चुरा दिया। और लेकिन फिर भी उस चोर को पकड़ के पकड़ना नहीं है, क्यों, इनको क्या करना है, फिर चोराग्रण्यम शरणम प्रपत्ति, क्योंकि वो इतना बड़ा चोर है कि उससे हमारा कुछ भी बच नहीं सकता। अब बच नहीं सकता तो क्या खामखा में कोशिश करें, क्या करना है, शरणम प्रपत्ति, कि उसकी शरण में चले जाओ, जो चुराना है चुरा लो, मुझे भी चुरा लो, मुझसे मेरे हृदय को भी चुरा लो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जो सुलूक करना है करो मेरे साथ, क्योंकि अब मैं तुम इतने सक्षम हो, इतने मनमानी करने वाले हो, मेरी बात तो मानोगे नहीं, इसलिए तुम्हारी शरण में हूँ, जैसा करना है वैसा करो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे विस्तार, सारे अवतारों का विस्तार होता है, यानी कि वहां से सारे अवतार होते हैं। कहां से, क्षीरोदक्षाय विष्णु से। क्षीरोदक्षाय विष्णु एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि अब भगवान को भी यदि अवतार लेना होगा तो क्षीरोदक्षाय विष्णु का, हम क्या कहेंगे कि भगवान विष्णु का अवतार है, ये बनाए भगवान ने, सिस्टम ऐसे बनाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्षीरोदक्षाय विष्णु उसको पैदा करेगा। किस कोई ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि भगवान कृष्ण तो यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ पर पैदा हुए थे, या फिर है ना देवकी और वसुदेव के यहाँ पर पैदा हुए थे, श्री राम तो है ना दशरथ और कौशल्या जी के यहाँ पर पैदा हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिरोदशा विष्णु डायरेक्ट से उसको पैदा करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो अवतार जो है वो विष्णु के अवतार कहलाएंगे। जो भी अवतार अभी जो भी भगवान अवतार लेंगे तो भगवान ने यह सिस्टम बनाया कि मैं डायरेक्ट से भी जब आऊंगा तो भी मुझे विष्णु के उस प्रोटोकॉल से निकल के आना पड़ेगा। जैसे समझो आपको किसी भी मुल्क में जाना होता है, किसी भी कंट्री में जाना होता है, तो क्या करते हो, एक एयरपोर्ट में आप पहले आपको क्या करना पड़ता है, एयरपोर्ट में आना होता है और एयरपोर्ट में जाकर जो भी प्लेन में आपको बैठना होगा कि भाई मुझे इस सिटी में जाना है उस सिटी में, तो उस प्लेन में आप बाद में बैठो। अवतार का मतलब होता है अवतृति इति अवतार, यानी कि जो ऊपर से नीचे उतरता है। तो जिस तरह प्लेन जैसे ऊपर से नीचे उतरता है, तो लेकिन फिर भी उसके लिए प्लेटफॉर्म वो एरोप्लेन के एयरपोर्ट पे तो आना पड़ता है ना। तो इसी तरह से किसी भी अवतार में भगवान जब उतरते हैं तो फिर पहले विष्णु से ही वो अवतार होता है। यहाँ पर ये बताया ना श्री प्रभुपाद ने कि वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। पहले ही कृष्ण है, ऐसा नहीं कि कृष्ण अभी विष्णु से ही उत्पन्न होंगे, कृष्ण पहले से ही है, लेकिन ये एक सिस्टम बनाया भगवान ने कि वो विष्णु से ही वो अवतार उत्पन्न होंगे। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि पुरुष अवतार तीन रूपों में प्रकट होता है। अब यहाँ पर ये जो सारा हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहला कारण दर्शाए विष्णु जो महत्त्व में सपुंजित भौतिक तत्वों को उत्पन्न करता है। संपुंजित का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि इससे पहले जो प्रलय हुआ था उसमें जो कुछ भी भौतिक तत्व थे है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और जितने भी जीव थे वो सारे महातत्व में जमा होकर कारण दक्षाय विष्णु के अंदर चले गए थे। अब जैसे कारण दक्षाय विष्णु को भगवान ने विस्तार किया तो फिर उनके रोम कुपुर से ब्रह्मांड निकले और जितने भी ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी महत्त्व थे, जितने भी जीव थे, वो सब उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और फिर सारे ब्रह्मांड जितने भी बनाए उनमें गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर दिया और गर्भोदक्षाय विष्णु से क्या हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और तीसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो प्रत्येक चराचर जीव में परमात्मा स्वरूप में है, ठीक है। अब तीसरा है वो परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें भगवान के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान जो है उसके विषय में जानना अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, उसके विषय में जानने के लिए तो ये जन्म मिला हमें मनुष्य जन्म। ये आजकल मनुष्य क्या जानने के लिए, उनके पास कुछ और है ही नहीं। एक बता रहे थे प्रभु जी बता रहे थे कि मेरा एक दोस्त है वो साइंस उसने लिया है और वो अभी मैंने उससे पूछा क्या स्टडी कर रहे हो आजकल, तो बोला आज मैं ना स्टडी कर रहा हूँ डाइजेशन सिस्टम ऑफ द मॉस्किटोस। मॉस्किटो जो होते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये आजकल लोगों को पता नहीं कि जानना क्या है। भगवान ने बुद्धि दी है, उससे आप सोचो कि मेरे भगवान जो है उनके विषय में पढ़ो, उनके विषय में जाने की कोशिश करो, लेकिन बस ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स वगैरह जो आते हैं उसमें कीड़े मकोड़ों के विषय में बताते हैं कि कैसे चिपकता है, कैसे खाता है, इसके अंदर बाल कितने होते हैं, इसके अंदर मुंह कैसा होता है, चलता कैसे, ये कोई जानने की चीज है। दफा करो, जैसा भी हो अगले जन्म में तुम और भगवान बताते हैं ऐसे कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सनातन भाव भाव, जिसके बारे में सदैव आप चिंतन करते रहोगे ना तो नेक्स्ट जन्म में आपको वही बनना पड़ेगा। यम यम वापी स्मरण भावम, जिस जिसका स्मरण करोगे त्यजत्यन्ते कलेवरम और फिर तम तमे वेति कौन्ते, ऐसा ही आपको जीवन मिलेगा। तो यदि हम सदैव भगवान के विषय में पढ़ते रहेंगे, भगवान के विषय में जानते रहेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि इस तरह का ज्ञाता यानी कि जो भगवान के विषय में जानना जानता है सांसारिक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्ट किया गया है। तो भगवान ने कब भगवत गीता में बताया ऐसे कि यदि आप मेरे विषय में जानोगे तो आपको वापस आना नहीं पड़ेगा, भगवान ने बताया था चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 9 में। जन्म कर्म समी दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता है, अपितु मामेति सोऽर्जुन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा बताया गया है। आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद जी कि इस श्लोक में महाविष्णु का सार दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेते रहते हैं, ठीक है। वो महाविष्णु जो है वो कुछ भाग में लेते हैं और इस तरह वे कारणों में लेते हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महतत्व की सृष्टि होती है। अब वो कारणों में लेते हुए हैं और प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। सिर्फ दृष्टिपात करने से तुरंत ही महतत्व की सृष्टि, क्योंकि महतत्व पहले से उनके अंदर संपूर्ण था, तो फिर फौरन से सृष्टि हो जाती है। और इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। इस प्रकार समय के आने पर, जैसे यहाँ पर क्या होता है, वो दृष्टिपात करते हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड की का जन्म उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे ब्रह्मांड जो है वो प्रकृति जो है ना उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं उत्पन्न? तो यहाँ पर उसका कारण बता रहे हैं कि कारण दक्षिण विष्णु प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत ही महतत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युमेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी दिख रहा नहीं है, जैसे फूल उगा है तो उस समय तो दिख नहीं रहा है ना कि किसी ने बीज भी बोया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि किसी ने बीज बोया ही नहीं था, खुद ही फूल निकल रहे हैं, फल निकल रहे हैं। आज अगर हम किसी है ना कोई सीजन होता है तो उस वृक्ष में खुद ब खुद फल निकल रहे होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा था जब पृथ्वी पर किसान ने बीज बोया था तो तभी वो आज फल निकल रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। अब देखो, कोई भी चीज जो है उसका कोई ना कोई कारण होता है। हमारे पास जो कोई भी आज आपके सामने जो भी पड़ा हुआ है, बुक है, तो उसको बनाने वाला कोई है। आप अगर पलंग में बैठे हुए तो उसको बनाने वाला कोई है। अगर आप कुछ भी चीज यूज कर रहे हो, माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हो और ये चार्जर यूज कर रहे हो, कुछ भी आप जो कुछ भी देखो, विदाउट क्रिएटर क्रिएट नहीं होता है ना। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती है, इसलिए कारण सागर कारणव कहलाता है, कारण अणव कहलाता है। कि वो जो कारण समुद्र में कारण दक्षिण विष्णु है, वो समस्त कारणों का कारण बनकर सारी सृष्टि को कारण बना। वैसे तो उनका मूल कारण कृष्ण है, लेकिन बाकी सृष्टि की सारी उत्पत्ति का कारण कारण दक्षिण विष्णु है, वही प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सृष्टि स्वतः उत्पन्न हुई है, बाय चांस ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। श्री भगवान जी बोलते हैं, जस्ट मूर्खता है जो ये सोचते हैं कि सृष्टि खुद ब खुद उत्पन्न हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। तो जो नास्तिक होते हैं वो अनीश्वरवादी होते हैं, यानी कि वो क्या सोचते हैं कि इस संसार का प्रकट करने वाला, इस संसार का ईश्वर कोई नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते भगवद गीता में चैप्टर नंबर 16 टेक्स्ट नंबर 8 में ऐसे नास्तिकों के विषय में बताया गया है। क्या कहा? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हैतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। जगत आहुरनीश्वर, उसका कोई ईश्वर नहीं है, उसको नियमित और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं हुआ है। और वो क्या सोचते हैं, अपरस्पर संभूतम कामन्यत हैतुकम, कि ये इनका कहना क्या है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, यानी कि बस काम वासना से ये सब संसार उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसका कोई ईश्वर नहीं, बीज कोई नहीं है। तो ये श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये नास्तिकों की विचारधारा है। तो ऐसे जीवों के साथ भगवान क्या करते हैं जानते हो, भगवान बता दे 16.19 में, तान्यहं द्विषतः क्रूरान् संसारीषु नराधमान् क्षिपाम यजस्रम अशुभान आसुरिष्वेश्व योनिषु। जो लोग ईशालु तथा क्रूर हैं और नराधम है, यानी जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वो नराधम है, भगवान बोलते हैं मनुष्यों में नीच हैं, उन्हें मैं क्या करता हूँ, आसुरी श्वेश्व योनिषु, निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान कृपामय है लेकिन हमें कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। हम भगवान को मानेंगे कि भगवान आप हो मुझ पर कृपा करो, लेकिन हम भगवान को ही नहीं मानेंगे तो भगवान की कृपा का, अब भगवान है ही नहीं तो कृपा कहाँ से करेगा। वो क्या बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो भगवान ठीक, भगवान बोलते ठीक है तुम समझते हो कि मैं नहीं हूँ तो ठीक है मैं नहीं हूँ, मैं अगर तुम मुझे मेरे अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं भी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कृपा भी नहीं करूंगा, तुम अपने कर्मों के अनुसार बारम्बार आसुरी योनियों में भटकते रहोगे। जब तक भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान की कृपा के हकदार कैसे बन सकते हैं। भगवान कहते हैं माम एकम शरण भजामि, शरण में आओ उसके बाद अहम तो हम सर्व पापे भयो। ऐसा नहीं है कि मैं कृपावान हूं तो भले शरण में आओगे नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, नहीं आपको आना पड़ेगा, पहले मेरी सरेंडर करना पड़ेगा, मेरी कृपा के लिए याचना करनी पड़ेगी, आपको मेरी कृपा की भीख मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आप पे कृपा करूंगा, मेरी शरण में तो आओ। अगर तुम ऐसे बोलोगे कि मैं हूं ही नहीं, भगवान ने बनाया नहीं ये संसार, तो ठीक है मैं भी फिर है ना आप अपने कर्मों को भोगते रहो। फिर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है, नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। अब सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत कैसे दे सकता है, चलो ठीक है काम वासना से तो आज जीव उत्पन्न हो रहा, इससे पहले स्टार्ट क्या था, तो स्टार्ट कुछ नहीं दे सकेगा कि सिद्धांत क्या है, बीज कैसे आया, वृक्ष कैसे उग रहे, स्टार्ट क्या है, वो कुछ भी सिद्धांत नहीं दे सकते। प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की कोई शक्ति नहीं होती है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं एक तथ्य, एक सत्य को, कि जब तक प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, जब तक पुरुष का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, जिस प्रकार के प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर के संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। हाँ, संतान उत्पन्न कैसे होगी जब तक विवाह नहीं होगा, तो पुरुष गर्भदान करता है और प्रकृति प्रसव करती है, ये एक सिस्टम है आज के बताया जा रहा है, आज ऐसा होता है। ये उन्होंने क्या कहा था कि काम्स के कारण भी हो रहा है, लेकिन स्टार्ट क्या हुआ, वो पुरुष आया कहाँ से है जिसने ये किया। लेकिन अगर आप कहते हो कि आज ये सृष्टि जो है वो केवल काम के, जो कह रहे हैं ऐसे कि काम के कारण ही आई है, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो कभी भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो अच्छा सिद्धांत बेस नहीं बता सकते। जिस प्रकार अभी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिस प्रकार अजागर स्तन से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यानी कि जैसे बकरी होती है उसके स्तन भी होते हैं लेकिन उसकी गर्दन में भी शेप ऐसा स्तन जैसा बना होता है, लेकिन वहां से दूध नहीं होगा, निकलेगा नहीं, अगर बच्चा वहां से दूध पीना चाहेगा तो वहां से दूध नहीं पी सकता। यदि भी वे स्तन जैसा लगता है, देखने में भले वैसा ही है, इसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। ये भौतिक तत्व स्वतः कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रकृति है ना, और जैसे स्त्री पुरुष के सानिध्य के बगैर संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, इस तरह से प्रकृति जो है वो पुरुष यानी भगवान की सानिध्य से के बगैर कभी भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकती। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति को गर्भ विशिष्ट करने वाला है, क्योंकि ऐसा शिला भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं 14.3 में, मम योनिर्महद्भ्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद्भ्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् कि ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तुओं का जन्म का स्रोत है, और चलो ठीक है ये महत्त्व से जन्म होता है, लेकिन तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् मैं उसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, और संभवतः सर्वभूतानां ततो भवति भारत जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। आगे शरूपा जी बोलते हैं कि चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत ही असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। भगवान की इच्छा हुई और भौतिक शक्ति की ओर निहारा, दृष्टिपात किया, तो भगवान ने क्या, दृष्टि ने क्या किया, ठीक है उत्पन्न कर दिए बहुत सारे ब्रह्मांड, ये ऑटोमेटिक बहुत सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, और भगवान की लेटने की इच्छा थी तो सारे ब्रह्मांडों में आकर लेट गए। किसके रूप में? हाँ, गर्भोदशा के रूप में। पहले क्षीरोदशा सॉरी कारण दशा के रूप में सृष्टि पर दृष्टिपात किया, और फिर इच्छा हुई कि और मुझे लेटना है असंख्य रूपों में, तो सृष्टि ने बहुत, क्योंकि सृष्टि पर दृष्टिपात किया था तो सृष्टि ने बहुत बहुत ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए, और सारे ब्रह्मांडों में गर्भोदशा विष्णु के रूप में लेट गए, और उनकी नाभि से कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी निकले। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे लोग तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गए। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हैं, कार्य कर सकते हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते। अब ये इतनी भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इच्छा अनुसार सब कुछ हो रहा है, कोई ना तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, यही वेदों का अभिमत है। वे क्या कहते हैं, न तत्समः च अधिको कुतोन्यो, उनके समान कोई नहीं है तो उनकी उनसे बढ़कर कैसे हो सकता है। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं जो सब कार्य कर रहे हैं, जबकि भगवान जो है वो आराम से लेटे हुए होते हैं, तो दिखते नहीं मजदूर की तरह काम करते हुए, तो नास्तिक लोग सोचते हैं कि भगवान है किधर, अगर कार्य करते हैं तो दिखते, क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं मूढ़ हम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम्, मूढ़ लोग हैं, बेवकूफ हैं, गधे हैं, रास्कल, समझते नहीं है मुझे कि मैं ही सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। तो आज हमने यही पढ़ा भगवान के विषय में, भगवान के विस्तार के विषय में। वास्तव में भक्तों ये सब जानने से हमें ये पता चलता है कि हम जिस कृष्ण की उपासना करते हैं हम कितना सौभाग्य है, वो कितने महान है, तो हृदय में इतना आदर, हमारा जो प्रेम है वो और भी बढ़ता है कि ये कोई सामान्य नहीं है, इसके अंदर इतने गुण है, इसका इतना विस्तार है, ये कृष्ण इतना सब कुछ करता है और फिर भी मेरे प्रेम में यहाँ पर मेरे साथ रह रहा है, मैं जैसे चाहूँ अपनी मर्जी से उसके साथ व्यवहार करती हूँ, उसे जब चाहूँ खिलाती हूँ, जब चाहूँ गोद में बिठाती हूँ, जब चाहूँ सुलाती हूँ, तो ये कितना कृष्ण की कृपा है कि इतना महान होने के बावजूद भी मेरे साथ, मेरे जैसे तुच्छ जीव के हृदय में भी और साथ में भी रहना स्वीकार करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।